نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تو آج انشاءاللہ ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے کہ میں ابھی ان کا نام لکھ رہی تھی تو میں نے جب اکرمہ کے بعد رضی اللہ عنہ لکھا تو میرے دل میں ایک ہوک اٹھی کہ باپ کون ہے اور بیٹا کیا ہے. اللہ کے نبی کی گواہی ہے اس کے بارے میں کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. تو جب آپ اکرمہ کا پورا نام لکھیں گے نا تو ان کا نام کیا ہوگا؟ اکرمہ بن ابی جہل. کتاب ہم یوز کر رہے ہیں اس وقت حیات صحابہ کے درخشاں پہلو صفحہ نمبر 144. یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو ماں باپ کے گھر سے اچھی تربیت نہ بھی ملی ہوئی لیکن فطرت کے اندر جو اللہ نے سچائی رکھی تھی وہ مسخ نہیں ہوئی. تو آئیے ذرا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. پہلے ان کے حالات کوئکلی پڑھ لیتے ہیں, اینڈ پہ پھر عمل کی باتیں کریں گے. اور اس میں سے ہمیں آج پیرنٹنگ کے بہت سارے مسائل بھی سمجھ آئیں گے کہ اگر ہم بچوں کو فطرت پہ رکھیں تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہم سے پیچھے ہی رہیں, وہ دین میں ہم سے بہت آگے بھی جا سکتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت قول ہے. آپ نے فرمایا, جلد ہی اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آئے گا. اس کے باپ کو گالی نہ دو, اس لیے کہ میت کو گالی دینے سے اس کے لواحقین کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی میت کو نہیں پہنچتی. کیا مطلب ہے؟ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے. اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ ابو جہل کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو ایمان نصیب ہوا. اور میں اپنے دل سے سوچ رہی ہوں کہ اگر ابو جہل کی زندگی میں اکرمہ مسلمان ہو جاتے اس کے لیے کتنا ٹیزنگ ہوتا نا. یعنی اپنے اور اپنے بچوں کے تعلق کو سامنے رکھ کے یہ دعا کیجئے کہ اے مالک, ہمارے بچوں کو دین میں ہم سے آگے رکھنا, ہمارے بچوں کو تقویٰ میں ہم سے آگے رکھنا, ان کے اندر دین کی خوبیاں, اسلام کی خوبیاں ہم سے زیادہ رکھنا. کیونکہ بعض بچوں کو تو بڑی رہنمائی ملتی ہے اپنے ماں باپ سے, لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماں باپ سے تو نہیں ملتا لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو دے دیتا ہے. ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں. اے مہاجر شخص سوار خوش آمدید, یعنی گھوڑے پہ بیٹھ کر ہجرت کر کے آنے والے شخص, تمہیں ویلکم. جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشد و ہدایت پر مبنی اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر پیش کیا. اس وقت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی ابھی اپنی عمر کی تیسری بہار کے آخری ایام میں تھے. کتنے سال کے تھے؟ اللہ کے نبی کے نبی بننے کے وقت 3 سال کے بیبی ہوئے نا. یہ قریش میں حسب و نصب کے اعتبار سے سب سے معزز اور مالی اعتبار سے سب سے زیادہ تونگر تھے, یعنی کھاتے پیتے گھر سے تھے. کہہ لیجئے کہ ان لیڈز میں سے تھے, کسی معاشرے کے جیسے وزراء اور امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں, یہ ان میں سے تھے. ان کے لیے مناسب تو یہی تھا کہ جس طرح ان کے ساتھی سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور مکہ معظمہ کے بعض معزز گھرانوں کے فرزندوں نے اسلام قبول کیا, اسی طرح یہ بھی مشرف با اسلام ہو جاتے. کیونکہ انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے نا, خاص طور پہ ٹین ایج میں. لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن ان کا باپ سب سے بڑی رکاوٹ تھا. کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا باپ کون تھا؟ یہ وادی مکہ کا بہت بڑا ظالم و جابر, مشرقین عرب کا قائد, مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے والا, جس کی سخت سزاؤں کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں ثابت قدم نکلے اور اس ظالم کے مکر و فریب کے ذریعے اہل یقین کی صداقت کو جانچا گیا. وہ حق و صداقت کے معیار پر پورے اترے اور یہ بالآخر ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا. یہ تو ہے ان کے باپ کا مختصر تعارف. یہاں سے دیکھیے کہ اچھی فیلنگز تو نہیں آ رہی نا. عموماً لوگوں کی جب بات کی جاتی ہے تو ان کے باپ دادا, خاندان, برادری, فیملی کا تذکرہ بڑے اچھے لفظوں میں ہوتا ہے, لیکن حضرت اکرمہ اس نعمت سے محروم تھے. لیکن جہاں تک حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے, یہ بلا شبہ قریش کے بہت بڑے لیڈر اور قابل رشک شخص سوار تھے. इससे पता चलता है कि हिदायत किसी की मिरास नहीं है, अल्लाह ताला जिसको भी देना चाहे। जनाब इकरमा ने शुरू में तो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी अपने दिल में बिठा ली और आपके साथ शदीद अदावत यानी दुश्मनी से पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तरह तरह की तकलीफ से दोचार किया। इस्लाम और मुसलमानों पर ऐसे ऐसे मजालिम ढाए कि जिन्हें देखकर इनके बाप अबू जहल को दिली मुसरत हासिल हुई। जब इनके बाप अबू जहल ने गज़वे बदर में मुशरिकीन की क़यादत की तो इसने लात उज़्ज़ा की कसम खाकर कहा, मैं इस वक्त तक मक्का वापस नहीं जाऊंगा जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मैदान में शिकस्त न दे दूं। मुकामे बदर में इसने पड़ाव किया यानी स्टॉप ओवर। मुसलसल 3 दिन तक यहाँ ऊँट ज़िबा करता और शराब पीता रहा और अक्सर सुरूद की महफिल जमती रही। जब अबू जहल ने मार्का बदर में मुशरिकीन की क़यादत की तो इसका बेटा इकरमा रदी अल्लाह अन्हो इसका दस्तो बाजू बना हुआ था, लेकिन उस दिन लातो उज्जा अबू जहल के कुछ काम ना आए, इसलिए कि वो किसी की पुकार सुनते ही न थे। लात और उज्जा ने इसकी कुछ मदद न की, इसलिए कि वो हर एतबार से आजीज व बेबस थे। ये मैदान बदर में बुरी तरह कत्ल होकर गिरा। इसके बेटे इकरमा ने अपनी आंखों से देखा कि मुसलमानों के नेज़े इसका खून पी रहे हैं और अपने बाप के मुंह से निकलने वाली अंदोहनाक यानी खौफनाक चीख अपने कानों से सुनी। जनाब इकरमा रदी अल्लाहु अन्हु सरदारे कुरैश की लाश को मैदान बदर में ही छोड़कर मक्का वापस आ गए। शिकस्त ने उन्हें इस कदर आजिज़ो पसवा कर दिया कि अपने बाप की लाश को भी मक्का में दफन करने के लिए अपने हमराह न ला सके। मुसलमानों ने दूसरे मुशरिकीन की लाशों के साथ इसकी लाश को भी तकीब कुएं में फेंक दिया और ऊपर से रेत डाल दी, यानी एक सूखा कुआं था उसमें। यहाँ तक देखिए तो कितनी बड़ी बात है ना, अपनी आंखों के साथ ये सब कुछ देखा और बाप के मुआविन थे। इससे क्या पता चलता है कि जब इस्लाम नहीं था तो उनको भी तो अल्लाह के नबी झूठे ही दिखते होंगे, इस्लाम गलत ही दिखता होगा। तो यहाँ से एक अमल की बात आपके मेरे लिए साइड इशू है, कभी किसी बड़े से बड़े काफिर तो क्या दुश्मन काफिर के भी मुसलमान होने से ना उम्मीद ना हो। कल तक बदर में बाप के साथ मुसलमानों को ढाने गए हैं, कल अल्लाह ने इनको क्या बनाना था, तो क्या पता चला कि दूसरों के बारे में फतवे ना दें। किसी को शराब का कप भी हाथ में पकड़े देखे ना, कभी ना कहीं ये शराबी है। हो सकता है वो किसी से पकड़ के फेंकने जा रहा हो, फिर क्या होगा। हो सकता है कोई खरीद के जाकर बहा दे। मुसलमान हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखता है। हम अमूमन क्या करते हैं, अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, बद से बदनाम बुरा। तो आज देखिए बदर की जंग और पहली जंग थी, जिन्होंने सीरत पढ़ी उनको तो ये पैराग्राफ बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जिन्होंने नहीं अभी तक पढ़ा तो उनके लिए ये बात है कि दुश्मन थे तो इस्लाम के दुश्मन थे, जो बाप करता था ये भी करते थे। और पहली ही जंग में बाप ख़त्म हो गया, बाप की मैयत तक उठाने की हिम्मत ना हुई। नबी सल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उनको एक कुएं में डलवा दिया जैसे बाकी डाले गए। लेकिन यहाँ से अब आगे देखिए एक दूसरा दौर, एक और कहानी। इस दिन से इकरमा बिन अबी जहल का इस्लाम के साथ एक दूसरा तर्ज अमल शुरू हुआ। पहले तो इस्लाम के खिलाफ अपने बाप की हिमायत की वजह से अदावत थी और अब बाप का इंतकाम लेने के लिए दुश्मनी अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच चुकी थी। यानी आप कह लीजिए कि पहले तो इस्लाम की दुश्मनी थी, अब बाप की मोहब्बत भी शामिल हो गई। इस वक्त इकरमा और दीगर वो तमाम लोग जिनके बाप मार्का बदर में कत्ल हो चुके थे, मुशरिकीन के सीनों में अदावत की आग जलाने लगे और मकतूलीन के वरसा के दिलों में इंतकाम की आग का शोला भड़काने लगे, यहाँ तक कि मार्का उहद बरपा हुआ। कितनी देर लगी दोनों गजबात के इन बिटवीन, तकरीबन 1 साल। इकरमा बिन अबी जहल उहद की जानिब चल निकले, अपनी बीवी उम्मे हकीम को भी साथ ले लिया ताकि वो सफ़ों के पीछे खड़ी होकर दीगर मकतूलीन की वारिस औरतों के हमरा एक साथ ढोल बजाकर नौजवानाने कुरैश को लड़ाई के लिए बरांगीख्ता कर सके। बरांगीख्ता क्या होता है, गुस्सा दिलाना, प्रोवोक करना, चिड़चिड़ाना, ताकि इन्हें इस हालत में देखकर कुरैश के शख्सवार जमकर लड़े और मैदान से राहे फरार इख्तियार न कर सके। यानी बीवी को भी साथ ले। आप ये कह लीजिए कि पिछली जंग में बाप के साथ आए और इस जंग में अपनी बीवी को भी साथ ले आए। यानी जब दुश्मनी होती है ना तो ऐसी होती है, फिर बंदा अकेले नहीं गुस्सा निकालता, बल्कि कोशिश क्या होती है कि अपने घर वालों को भी साथ लेकर इस्लाम की बात करने वालों को ख़त्म किया जाए। कुरैश ने शख्स सवारों की दाई जानब खालिद बिन वलीद, बाई जानब बिक्रमा बिन अबी जाहल को मुतय्यन किया। गज़वे उहद में इन दोनों शख्स सवारों ने एक तूफान बर्पा कर दिया जिससे कुरैश का पल्ला भारी हो गया और मुशरिकीन को इस दिन बड़ी कामयाबी हासिल हुई। ये सूरत हाल देखकर अबू सुफियान ने कहा, आज हमने गज़वे बदर का बदला ले लिया। लेकिन जिन लोगों ने सीरत पढ़ी उनको पता कि ये भगदड़ वक्ती थी, बाद में फिर मामला बदल गया था। शुरू में मुशरिकीन आगे आए, बाद में फिर बराबरी पे मामला ख़त्म हुआ। और तीसरी जंग और गज़वे खंदक में मुशरिकीन ने कई रोज़ तक मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किए रखा। आखिरकार इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह अन्हो का पैमाने सब्र लबरेज हो गया। उन्होंने खंदक में एक तंग सी जगह देखी तो अपने घोड़े को एड़ लगाई और सरपट दौड़ा और यकदम खंदक को अबूर कर गया। इनके पीछे चंद और शख्स सवार भी खंदक अबूर कर गए। इन में से अमर बिन अब्द आमरी का तो काम तमाम हो गया और इकरमा बिन अबी जहल जान बचाकर भाग निकले में कामयाब हुए। ये बताइए कि अभी इकरमा की इस वक्त जान क्यों नहीं निकली? क्योंकि इनके नसीब में हिदायत थी। कई चीज़ों में से गुजर कर भी बंदा हिदायत पे आ जाता है। इससे क्या पता चलता है? बड़े से बड़े राह से भटके हुए को भी अल्लाह ताला मौके देता है। और इकरमा खुशकिस्मत हैं कि इन्होंने इन मौके से फ़ायदा उठा लिया, वरना बहुत सारे लोग तो फिर भी फ़ायदा नहीं उठाते। खैर, चौथी जंग गज़वे फतेह मक्का। अच्छा, पहली किस सन में हुई? गज़वे बदर 2 हिजरी में हुई, ओहद 3 में हुई, और खंदक और ओहद के बीच में 2 साल, और गज़वे जिसको आप कह लीजिए मक्का फतह होता है सन 8 हिजरी में। तो 8 साल हो गए इनको इस गुस्से और पेचोताप में जलते कुड़ते के अपने बाप का बदला लेना है। खैर, फतेह मक्का के दिन कुरैश ने ख्याल किया कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने ये फैसला किया कि लश्कर इस्लाम का रास्ता न रोका जाए ताकि वो बग़ैर किसी मुजाहमत के मक्का में दाखिल हो जाए। इस फैसले का इन्हें ये फ़ायदा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम के सिपा सलारों को ये हुक्म दे दिया कि पहले मक्का में से इसी के साथ लड़ाई करें जो इनसे नबर्द आजमा हो, यानी जो सामने आएगा उसी से मुकाबला करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए आप देखिए कि ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है जो आपके मेरे लिए, और वो क्या है कि जो आपके रास्ते में ना है उसको छोड़ दें। इस्लाम की ये बड़ी खूबसूरत बात है। आज के दौर की जंगों को देखिए, बेगुनाह शहरी मरते हैं ना, बॉम्ब ब्लास्ट बेगुनाह शहरी, रॉकेट लॉन्चर गिरा बेगुनाह शहरी। पहले दौर की जंगें फिर भी कुछ महजब थी, और वो कैसे? जो आता था सामने लड़ने के लिए वो उससे लड़ते थे, जो मारना चाहता था उसको मारते थे, जो मुकाबला करना चाहता था मुकाबला करते थे। तो आज की जंगें ज़्यादा वहशियाना है। माओ को नहीं पता कि उनके बच्चे स्कूलों से वापस आएंगे कि नहीं, बीवियों को नहीं पता कि उनके शौहर मस्जिदों से वापस आएंगे कि नहीं। तो याद रखिए, आज इस पे बात करने की ज़रूरत है। एक बॉम्ब फटता है, पता भी नहीं चलता फाड़ने वालों के कुछ लोग मारे जाएँ, तो ये वहशियानापन है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इकरमा बिन अबी जाहल और इनके हमरा एक जमात कुरैश की शिराजा बंदी के लिए निकले ताकि मुसलमानों के लश्कर जरार का रास्ता रोकें। यानी इकरमा और इनके साथ एक जमात, शिराजा बंदी होती है ऑर्गेनाइज करना, किसको कहाँ खड़ा है क्या है वो है। आप कह लीजिए कि इन्होंने मैनेजमेंट का काम अपने ज़िम्मे लिया ताकि कुरैश की कारकर्दगी को बेहतर कर सकें। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक छोटे से मार्के में इनको शिकस्त दे दी। इनमें से चंद एक तो कत्ल कर दिए गए और कुछ भाग निकलने में कामयाब हो गए। इन भागने वालों में इकरमा बिन अबी जहल भी थे। इस रोज़ इकरमा को बहुत नदामत महसूस हुई। मक्का फतह हो जाने के बाद अब तो इनका यहाँ रहना मुहाल था। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुकाबले में आने वाले कुरैश के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया था, लेकिन इनमें चंद अशख़ास ऐसे भी थे जिनका नाम लेकर आपने ये हुक्म सादर फरमाया کہ اگر یہ کعبہ کے پردوں میں بھی چھپے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان افراد کی فہرست یعنی لسٹ میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی تھا، اس لیے وہ چپکے سے کھسک گیا اور یمن کا رخ کیا، کیونکہ یہاں اسے کوئی جائے پناہ نظر نہ آتی تھی۔ اس میں بھی سیکھنے کی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے اس کو کتنے خطروں میں سے بچا لیتا ہے نا، جیسے ہمارے نبی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دو ذبیحوں کی اولاد کہتے ہیں۔ ایک تو ہم سبھی جانتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا موقع، جو ایک آج آپ کے میرے بیچ میں بھی سنت موجود ہے، الاضحیٰ کے نام پہ قربانی کی جاتی ہے، بکرے کی، چھترے کی، اونٹ کی، گائے کی۔ لیکن دوسرا ہمیں نہیں پتا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے باپ عبداللہ۔ ان کا بھی نام ذبح ہونے والوں میں آیا تھا۔ بڑی لمبی کہانی ہے، شروع میں ہم سیرت کے سفر میں پڑھتے ہیں کہ کیسے عبد المطلب نے 10 بیٹے ہو جانے پہ منت مانی تھی کہ اپنے سب سے پیارے بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا، جو اس وقت کا رواج تھا، اور بار بار نام عبداللہ کہہ رہا تھا، جو اللہ کے نبی کے باپ تھے، باپ کو پیارے پڑے تھے۔ باپ نے کہا اس کو نہیں مارتا تو 10 اونٹ ذبح کر دوں گا، اگلی دفعہ کورا ڈالا تو پھر انہی کا نام۔ 10 دفعہ ایسا ہوا اور نام عبداللہ کا آ رہا ہے، تو 100 اونٹوں کی دیت وہیں سے چل رہی تھی۔ لیکن جو میں نے یہاں بات کرنی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے دنیا میں آتے اگر عبداللہ کی قربانی کر دی جاتی؟ اسماعیل قربان کر دیے جاتے تو قریش کہاں سے آتے؟ تو اللہ نے ادھر بھی بچایا، ادھر بھی بچایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ بالکل اکرمہ کی کہانی پڑھتے ہوئے مجھے بھی ایسی بار بار لگ رہا ہے کہ اللہ ان کو بار بار بچا رہا ہے، بار بار۔ اور دیکھیے یہ جو کہتے ہیں نا لسٹ میں نام آ گئی، یہ کون سی لسٹ ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں اس کو؟ اشتہاری مجرم۔ کچھ مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پکڑو تو سزا دو نہ ہو، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ زندہ نہ پکڑے جائیں تو گولی چلا دو۔ یہ ان میں تھے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا تھا جسے اسلام کا نقصان ہوا، لیکن اللہ نے اکرمہ کے نصیب میں ہدایت رکھی تھی، یمن کی طرف چلے گئے۔ اب وہ دور آ رہا ہے جس کو کہہ لیجئے کہ کلائمیکس، کیسے اللہ فطرت پہ پڑے ہوئے پردے چاک کرتا ہے اور ان کو کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں لے آتا ہے۔ اس موقع پر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ اور ان کے ہمراہ 10 دیگر خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ آپ کے دستے مبارک پر بیعت کریں۔ جب یہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو اس وقت آپ کے پاس آپ کی دو بیویاں، بیٹی فاطمہ بن عبد المطلب کی چند خواتین موجود تھی۔ ہند نے بات شروع کی اور وہ اس وقت نقاب اوڑھے ہوئے تھی، کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اس ذات کا شکر ہے جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں قرابت داری کی بنا پر آپ سے رحم کی اپیل کرتی ہوں اور میں صدقے دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر گویا ہوئی، یعنی بولی، اے اللہ کے رسول، میں ہند بنت عتبہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید۔ پھر اس نے کہا، اللہ کے رسول، آج سے پہلے آپ کے گھر سے بڑھ کر ہوئے زمین پر کوئی گھر نہ تھا جس کی تذلیل اور رسوائی مجھے محبوب تر ہو، اور آج آپ کے گھر سے بڑھ کر ہوئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں جس کی عزت مجھے محبوب تر ہو۔ سچ بولا نا، اور اللہ کے نبی نے بھی اس کو ویلکم کیا۔ یہ بھی نوٹ کیجئے، کتنے ہی سال کا گناہگار جب توبہ کر کے آتا ہے تو اس کو خوشخبریاں سنانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاکیزہ خیالات اور احساسات میں اور زیادہ برکت عطا فرما۔ یہ بھی نوٹ کریں، دیکھیے اس نے سچ بولا، کل مجھے دنیا میں آپ کے گھر سے برا گھر کوئی نہیں تھا لگتا، آج سب سے اچھا لگتا ہے۔ کیا بدلا ہے؟ اللہ کے نبی نے گھر بدل لیا، چہرہ بدل لیا؟ نہیں، ہند کا دل بدل گیا۔ اس کو نوٹ کیجئے، گھر جا کر لسٹ بنائیں، کس کو آپ کی دعوت اچھی نہیں لگتی؟ آپ بار بار ایک ہی چیز پہ بلاتی ہیں، آپ کا ایک ہی کام ہے۔ نوٹ کیجئے، اپنی دوستوں کی لسٹ بنائیں، وہ اس کو تو بالکل نہیں اچھی لگتی، وہ تو کہتی ہے مجھ سے بات ہی نہ کرو، وہ تو اب میرا فون ہی نہیں اٹھاتی۔ بنائیے لسٹ اور آج رات اللہ سے ان کے لیے دعا کریں، ایک ایک کا نام لے کر، کہ اللہ جیسے تو نے ہندہ کا دل بدلا ہمارے بھی دل بدل دے، کبھی مایوس نہ ہو۔ کچھ دالیں جلدی گلتی ہیں، کچھ دیر سے گلتی ہیں۔ हमारा काम क्या है? दूसरों को इन्वॉल्व करना, अपना प्यार दें। यकीन करें, अक्सर मैं जिक्र करती हूँ कि इधर ये जो हागनस्तुवा और हयब्रोतन के बीच में ब्रिज है ना, गाड़ी पे नहीं जा सकते, पैदल जा सकते हैं आप उधर, बिल्कुल उसके साथ ही मस्जिद है। तो माशाल्लाह ये दिन में 5 बार जाते हैं, तो अक्सर आके बताते हैं कि उस ब्रिज के नीचे 3 लोग, खुद को जोहा विटनेस कहते हैं, क्रिश्चियंस का गिरोह है, और उसमें एक कपल है, और आप हैरान हो जाएंगे, तीसरी एक औरत है जो ब्लाइंड है। सुबह आके वो खड़े होते हैं शायद 9 बजे, और ये अक्सर ईशा पे भी कभी आए मुझे तो कहते हैं मेरी उनसे आज बात शुरू हो गई थी, इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और वो सारा दिन क्या करते हैं, एक रैक सा उन्होंने बनाया, वह स्टैंड सा साथ रखते हैं, और छोटे छोटे ब्रोशर, हेलो हाय, जो रुक जाए उसको ब्रोशर दे के बात करेंगे। और ये कहते हैं कि बहुत कम लोग रुकते हैं, एक तो ना कि खड़े हैं तो अपना दीन फैला रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है, नहीं सारे दिन में कोई एक आधा बंदा उनसे खड़ा होकर बात सुनता है, जिसमें एक ये भी है, क्योंकि इन्होंने अपनी बात सुनानी होती है। लेकिन उनको कोई इतना रिजल्ट भी नहीं मिलता। एक दिन मैं भी गई इनके लिए, उधर गई, वहां इन्हीं को लेके खड़े थे पास, तो मुझे इन्होंने मिलाया कि ये मेरी वाइफ है, इतनी खुश मेरे पास आ गई, ही इज वेरी काइंड पर्सन, ही इज वेरी गुड पर्सन। तो मैंने भी थोड़ी सी उससे बात की। लेकिन जो बात मैं आपको कहने लगी हूँ, जिनके पास कुछ भी तो नहीं है, वो तो बर्फ में भी खड़े होते हैं, बारिश में भी खड़े होते हैं, धूप में भी खड़े होंगे, हम मुसलमान किधर सोए हुए हैं। उनको दावत का इतना शौक है कि रिस्पॉन्स है नहीं, उनको तो उनके दीन के मुताबिक अदर मिल ही रहा ना। और मैं तो इनसे कह रही थी, हो सकता है ये अपॉइंटेड हो, इतनी पक्की पाबंदी से तो वाकई बंदा जॉब समझ के आता है, या तो वाकई उन्होंने भी फिर अल्लाह से जॉब की हुई है, क्या आंधी है तूफान है कोई आता है आए नहीं आता हम खड़े हैं, तो या फिर क्या बात है वो वहां खड़े रहते हैं। उसने एक सवाल किया था मेरे हस्बैंड से, उसने कहा एक बात तो बताओ कि अगर तुम ये कहते हो कि मुसलमान सही है, इस्लाम सच्चा मजहब है, बात तो उसने इंग्लिश में की लेकिन मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ, फिर मुझे एक सवाल का जवाब दो, फिर तुम घर घर हमारी तरह पैगाम देने क्यों नहीं जाते? हम जीजिस का नाम लेकर घर घर फिरते हैं, मिशनरीज हैं, हम काम करते हैं, अगर तुम मुसलमान वाकई हक पे हो, इस्लाम सच है, तो तुम मुसलमान क्यों नहीं डोर टू डोर जाते और अपने खुदा का पैगाम देते? देखे ना, ये तो खुदगर्जी है ना, कि मैं किसी को आग में गिरता देखूं और उसको ना बचाऊं, और मुझे हक पता है तो मैं आपसे छुपा लूं, मुझे पता है फलां दुकान से चीज बड़ी सस्ती मिलती है तो मैं आपको ना बताऊं, तो जुल्म है ना। और उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था मेरे पास, मैं तो सर शर्म से झुका दूं कि पैगाम देने तो दूर की बात, ये जुमला लिखिएगा, पैगाम देने वाले तो होते ही थोड़े हैं, मान लीजिए वो तो किसी माशरे में कोई इक्का दुक्का ही होंगे, शाजो नादर, पैगाम लेने के लिए नहीं कोई आते। सच के झूठ, तलब नहीं है लोगों में, तड़प नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में सब पहुंच गया, और घर में जो पहुंचता है वो किस हद तक एब्जॉर्ब होता है ये आपको पता है या आपके रब को पता है? ऐसे लगता है दिन ब दिन दीन से और इल्म से और इस्लाम से दूरी, एक बाहर के फितने एक अंदर के फितने, फितनों में ये भी फितना नोट कर लीजिए कि इल्म का शौक ही नहीं, जहालत है, और बनते हैं अपने लिए बहुत बड़े मुफ्ती। तो याद रखिएगा, हिंदा मुसलमान क्या देखकर हुई? इस्लाम का गलबा देखकर हुई। जितने लोग फतेह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए ना, वो किताबें पढ़ के नहीं हुए, वो पढ़नी होती तो उनके पास आप देखिए 8 और पिछले 13 21 साल थे। किताबों से मुराद ये कि आपका तर्जुमा, आपकी फिक, आपकी ग्रामर सुन के नहीं आएंगे, वो आपका गलबा देख कर आएंगे। यदखुलून अन्नासा फी दीन इल्लाही अफवाजा। जब किसी को भी इज्जत मिलती है, शोहरत, इज्जत से मेरा ये कि पॉपुलैरिटी मिलती है ना, तो लोग ये सोच के चलो देखें कौन क्या हो रहा है, अच्छा इधर इतने लोग आ रहे हैं हम भी देखें, उनका वो अजर नहीं है जो अबू बकर का और कह लीजिए कि बिलाल का और अली का था, कि जब कोई हिस्ट्री नहीं थी इस्लाम की, क्यों फिर अल्लाह उनको साबिकून अव्वलून कहता है? तो हिंदा का मुसलमान होना और बहुत सारे लोगों का, आप देखिए कि नबी सल्लम के साथ फतेह मक्का के मौके पे 10,000 का लश्कर था, ओनली 10,000, 10K कह लीजिए चलिए, और उसके एक साल के बाद गुजरता है बीच में 9, तो 10 में जब आप हज पे जाते हैं तो आपके साथ कितना गिरोह था? 1 लाख, उसके आगे जो मर्जी लगा ले, 10 गुना ताकत हो गई ना मुसलमानों की नफरी, ये गलबों की अलामत होती। आज भी जिन लोगों के साथ आप देखें ना, हजारों, मिलियन, 10 मिलियन, फुलां फुलां फुलां, ये शोहरतों से आते हैं। मशहूरी, पॉपुलैरिटी, लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, कोई वीडियो खोलें यहाँ पे लिखेंगे हमें सब्सक्राइब करें फिर हम आपको बताएंगे। तो अल्लाह ताला ने हिंदा का दिल खोला, उसके अल्लाह के नबी के बारे में दिली जज्बात ही बदल गए। अब उधर खड़ी थी इकरमा की बीवी भी, उनका क्या हुआ आइए देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि अल्लाह तेरे पाकीज़ा ख्यालात व एहसास में और ज़्यादा बरकत अता फरमाए। फिर इकरमा बिन अबी जहल की बीवी खड़ी हुई, क्या नाम था अभी ऊपर गुजरा, उम्मे हकीम। इसने इस्लाम कबूल किया और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, इकरमा इस डर से यमन भाग गया है कि कहीं आप इसे कत्ल ना कर दें, अज़राहे करम इसे पनाह दे दें, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करम करेगा। यहाँ एक जुमला बोलूँ, हर बड़े इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है। बीवी जुरत करके अल्लाह के नबी तक आ गई। इकरमा क्यों भागे, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, हम कोई बताएगा? जी, वो इश्तहारी मुजरिम थे तो उनको डर था कि मुझे देखकर किसी ने गोली मार देनी है, लेकिन अल्लाह बचाना चाहे तो कौन रोके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज से वो पनाह में है। यहाँ से आपको अल्लाह के नबी का क्या मिजाज दिख रहा है, खड़े हो जाते, इधर आओ तो मैं बताऊँ, तुम्हारा शोहर बदर में भी था, ओहद में भी आया, खंदक में भी था, मक्का फतह होते वक्त उसने क्या किया? नहीं, इस्लाम में ताना नहीं। अच्छा, कुछ लोग हैं ना जो पीछे हो जाते, वो कहते हैं हम इसलिए नहीं आते, फिर हमें शर्म आती है, फिर लोग कहेंगे लो जी आज खाना खाने तो आगे वैसे नहीं आए, तो उनको हतुल बसा शर्मिंदगी सब चाहिए। भाई कोई बात नहीं, रोज़ तो किसी के घर कोई नहीं जाता, लेकिन जब कोई बुलाए फिर ना जाए तो खतरा, शादियों में ना जाए फिर डर है कि कोई दिल में गुस्सा लेकर बैठे हैं, बिस्मिल्लाह करके आइए। यानी कभी मजाक में या बेतकल्फी में भी कुछ ना बोले किसी नए आने वाले को देखकर कि अच्छा जी आ गए आप आज, ये भी जुमला अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो बस शुक्र कर दिया करें, मोहब्बत कर दिया करें किसी को देखकर, लेकिन ताने ना दें। और अल्लाह के नबी को और बंदों को मारने से तो कोई गरज ही नहीं थी, आपने इकरमा को क्यों मारना था, जबकि उनकी बीवी उनके हक में फरमाइश कर रही हैं कि वो मुसलमान हो जाएगा। ये है तो याद रखे, अल्लाह के नबी का सारा काम, इवन मैदान जंग में भी अफराद थे, इनका कुफर ख़त्म होकर इनको इस्लाम में ले आओ, आप मारना नहीं चाहते थे, आपको किसी की जायदादों से, किसी के माल गनीमत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, और वो इसकी मिसाल यहाँ मौजूद है। खैर, बीवी थी, अब शोहर चला जाए घर से पता नहीं किधर कहाँ, गम तो उसको भी पड़ा होगा, चल पड़ी वो इसकी तलाश में। उसी वक्त चल निकली, एक रूमी गुलाम भी उसके हमराह था। रास्ते में गुलाम की नीयत में फतूर पैदा हो गया और वो इस पर डोरे डालने लगा, लेकिन ये इसे उम्मीद दिलाती रही और टालती रही, यहाँ तक एक अरब कबीले के पास पहुँच गई, इनकी मदद तलब की तो उन्होंने इसे रस्सों से बांध दिया। ये मुसलसल अपनी राह पर चलती गई, यहाँ तक कि इलाका तहामा के साहिले समंदर पर इकरमा से जा मिली। वो एक मुसलमान मल्लाह से ये कह रहा था कि इसे कश्ती में सवार करके पार लगा दे। मल्लाह इसे कह रहा था कि अपनी नीयत खालिस कर लो तो तुझे पार लगा दूंगा। इकरमा ने इससे कहा, मैं अपनी नीयत कैसे खालिस करूं? देखिए तबलीग का अंदाज। मल्लाह बोला, तुम कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं और बिला शुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इकरमा ने कहा, इसी कलमे की वजह से तो मैं मक्का से भागा हूँ। इसको नोट करें। वो दोनों ये गुफ्तगू कर रहे थे कि उम्मे हकीम वहाँ इकरमा के पास पहुँच गई और कहने लगी, मेरे चचा के बेटे, मैं आपके पास लोगों में सबसे अफजल, सबसे बढ़कर नेक और बेहतर हस्ती के पास से आई हूँ, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से। मैंने तुम्हारे लिए आपसे पनाह तलब की तो आपने कमाल शफकत से पनाह दे दी, अब अपने आप को हलाकत में ना डालिए। इसने कहा, क्या तुमने खुद बात की है? फरमाया, हाँ मैंने खुद बात की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पनाह दे दी। वो मुसलसल यकीन और इत्मीनान दिलाती रहीं, यहाँ तक कि इकरमा इसके हमराह लौट आए। रास्ते में से अपने रोमी गुलाम का वाक़या बताया तो ये सुनते ही पहले वहाँ पहुँचे जहाँ इसे बांध रखा था, इस्लाम कबूल करने से पहले इसे कत्ल कर दिया। ज़ाहिर है कि उसने इसकी बीवी पर नज़र डाली थी, तो इन्होंने कहा चलो ये भी कत्ल करता जाऊँ। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, इकरमा ने अपनी बीवी से खलवत का इरादा किया तो इसने बड़ी सख्ती से इनकार कर दिया। अब ये देखिए, ये है वो मुश्किल इम्तिहान जिसमें आकर कई लोग खड़े हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते, और वो कह कि इस्लाम कबूल करते ही पिछले रिश्ते कट डाउन। कहने लगी, मैं मुसलमान हूँ और तू मुशरिक है। इसे बड़ा ताज्जुब हुआ और कहने लगा, मेरे और तेरे दरमियान में तो बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई है। जब इकरमा रजी अल्लाह अन्हु मक्का मुअज्जमा के करीब पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, अन करीब इकरमा बिन अबी जहल तुम्हारे पास मोमिन और मुहाजिर बनकर आएगा। इसके बाप को गाली न दो, इसलिए कि मैयत को गाली देने से इसके लवाहिकीन को तकलीफ होती है और वो गाली मैयत को नहीं पहुंचती। क्या दिख रहा है यहाँ? अखलाके नबवी। हो सकता था ना कि लोग उसको देखकर उसके बाप का ताना दे देते। तो बाप तो चला गया, बेटे को तो दुख होना ही था, आपने रोक दिया। ये भी सीखने की बातें हैं, किरदार साजी है सारी की सारी इन वाकयात में। किसी को देखकर कोई अगली पिछली बात ना करें, कम बोलें, कम सुने, खुद को मसरूफ रखें, जिक्र करते रहें। फालतू बोलना बाज़वा फालतू सुनने का जरिया बनता है ना। आप किसी से बेतकल्लुफ हो ना कोई होगा। और अमूमन देखिए, बड़े शौक से शादी में गए, तैयार श्यार हो के सजे समरे, वहां गए तो देखा तो मोटे मोटे आंसू आंखों में। क्या हुआ? वो फलाह ने मुझे देखते ये कह दिया, फलाह ने मुझे ताना दे दिया। आम तौर पे आप देखिए फैमिलीज में ये बातें आम है। क्यों? इसलिए कि हम जुबान का इस्तेमाल बड़ी बेदर्दी से करते हैं, छुरी को भी संभाल के रखते हैं, जुबान नहीं संभलती। तो कम बोलिए, और अल्लाह के नबी ने पहले से कह दिया कि देखो ऐसी बात ना करना कि जिससे इकरमा को दुख हो। थोड़ी ही देर बाद इकरमा रजी अल्लाह अन्हो और इनकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में पहुंच गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो बहुत खुश हुए, खुशी के आलम में इनकी तरफ लपके। सवाल क्या है कि किस बात की खुशी थी? इकरमा कौन से को फूल और मिठाइयाँ लेकर आए थे आपके लिए? ये खुशी थी एक बंदे के आग से बचने की और इस्लाम की तरफ दावत की। ज़रा सा मैं आपको झंझोड़ने के लिए बातें करती हूँ, हालांकि वाकयात में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हमारी एक बहुत ही अच्छी साथी है दुनिया के एक दूसरे कोने में, जहाँ ना मैं कभी गई ना आप कभी गए। जो उनका मैसेज था वो पढ़ के सुना देती हूँ, वो सबकी हिदायत का ज़रिया बनेगा। इसलिए कि हम इस चीज़ का दर्द महसूस ही नहीं कर सकते कि कुफर और अहले कुफर के बीच में रहना क्या दुख और तकलीफ़ का मामला होगा। मैसेजेस पढ़ के सुना देती हूँ, सिर्फ इसलिए कि इकरमा के लिए अल्लाह के नबी इतनी खुशी मना रहे हैं, तो ये खुशी आपको मुझे क्यों नहीं नसीब होती जब हम अपने इर्द गिर्द कुफर के साथ फिरते लोगों को दंदनाते दिखे, या अपना सारा कुछ लिख के सलाम दुआ के बाद कहती हैं कि 2 हफ्ते पहले एक हिंदू फैमिली मेरे साथ वाली गली में शिफ्ट हुई, कल इनका कोई त्यौहार था, बकौल इनके बहुत बड़ा त्यौहार जिसे देख कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैंने शुक्राने के 2 नवाफिल अदा किए कि अल्लाह सुबहाना ताला का कितना बड़ा एहसान है कि हम मुसलमान हैं। मैं कुछ क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि एक लेक्चर ऐसा भी रखें कि हमारे आसपास ऐसे लोगों को दावते दीन का आगाज कैसे किया जाए कि ये लोग हमारे साथ साथ जहन्नुम की आग से बच जाएं। दिल बहुत परेशान है, आप इसलाह कर दें। अभी बहुत कुछ मैं वीडियो में नहीं बना पाई, इतनी सख्त रसूमात सुनी तो थी मगर पहली दफा आंखों से देखी है। चले ये देखिए, आपको दूर से ही दिख जाएंगी ये क्या कुछ है, और ये उस लड़की की पूरी पुश्त के ऊपर घंटियां बांधी हुई हैं और कपड़े भी उसके अजीबो गरीब हुदा से। ये मर्द औरतें सारे रंग बिरंग के कपड़ों में, और जो सबसे तकलीफ दे बात है ना वो नीचे पड़ने वाली है, यानी एक वाकई रसूमात लग रही हैं। और अगर वीडियोस प्ले करूँ तो आवाज़ें हैं बीच में। ये इन लोगों ने फैमिली की एक लड़की को चुना है जो किसी माता का रूप बनाकर अपनी इबादत करवाती है, और अब इसको चुने जाने और चुनाए जाने में और किसी भी फिल्मी सीन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और नाचते कूदते ये दीन तो नहीं होगा ना, ये तो रस्में ही हैं। तो आप बताइए कि इनको देख कर दिल नहीं चलता? हमारे सामने लोग खुश हो रहे हैं और सरासर जो कुछ है उसमें कोई दुनिया का दीन मजहब इसको गवारा नहीं कर सकता, और आप सामने आपके लोग बैठे नाच कूद रहे हैं। और चले फिल्मों में तो लोग करते ही हैं। और इसी तरह कल मुझे किसी ने क्लिप भेजा, मुसलमानों की शादी का क्लिप है, और उसमें वो डांसर्स नाच रही हैं जो कभी किसी हमारे बचपन में फिल्म का बेहुदा सीन था। मुसलमानों की पाकिस्तानियों की शादी है, वेस्ट में रहने वाला कोई माहौल। और जब वो गुजर रहे हैं तो खुद दिखाने वाली बता रही थी कि देखें ये इंडियन फिल्मों का सीन नहीं लग रहा, पीले गजरे और चूड़ियाँ और औरतें, और बाद में जो डांसर्स हैं वो, अल्लाह ही, उनमें मुबालगा नहीं करूँगी आपके साथ, अल्लाह ना मुझे तौफीक दे, अगर वो अलग से कहीं वो क्लिप देखूं तो किसी इंडियन मूवी का क्लिप है जो उनके ड्रेस थे, और सारे लोग खा पी रहे नाच रहे, और वो अंदर बस बीच में वो जो स्टेज के आगे जगह होती है उस पर नाच रही हैं, थिरक रही हैं। तो फिर अल्लाह के तो बहुत ज्यादा साहब आने चाहिए, अल्लाह का तो शुक्र कीजिए बच्चे में, एक फितना नहीं, इधर तो कितने फितने पड़े हुए, यानी कैसे खुश रहे, अच्छे कपड़े पहनने को दिल नहीं करता, अच्छे खाने खाने को दिल नहीं करता। आजकल तो ये पिछले 15-20 दिन से मुझे ऐसे लग रहा है शोक की कैफियत है दुनिया का, और फिर ऊपर से खबरें झूठी सच्ची फैलाने वाले, क्या हो गया और आगे क्या होगा, हमारी नस्लों के साथ क्या होगा, जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल, हमारे बच्चे, हमारे तालीमी इदारे, हर तरफ ऐसे लगता है कि दिल पे गम है, बोझ है, एक फिक्र है कि हम जा किधर है और हम मस्ती में कितने और खुश कितने हैं, और अभी हमारे प्लान कितने हैं, अभी तो हमने कई शादियों की तैयारियां करने पाकिस्तान जाना है, और हमने तो अभी ये करना है। यानी इस वक्त दुनिया को देखें तो एक डिसेंट और एक मुहज्जब पढ़ा लिखा बंदा फारिग नहीं रह सकता, फिर बाकी वो बेचारे जो पुल के नीचे खड़े हो जाते हैं, अगर उनके पास हक होता तो वो ही जीत जाते हैं। ये हम मुसलमान अपनी बेहिसी, ठंडे होने और मस्त होने की सजा भुगत रहे हैं, और अल्लाह के नबी ने कहा था फितने ऐसे तुम पे गिरेंगे जैसे अंधेरी रात होती है, बारिश के कतरों की तरह इतने आएंगे, ये आगे क्यामत के करीब देखिएगा, बंदा सुबह को उठेगा तो मुसलमान होगा और शाम को सोएगा तो काफिर होगा, ये हदीस के लफ्ज है, मैं नहीं बोल रही अपने पास से, और ऑपोजिट भी होगा। तो इन फितनों में निजात क्या है, अल्लाह की ये किताब, ये दीन, कितने खुशकिस्मत हैं। देखिए मैं और आप भी यही कुछ कर रहे होते जो इकरमा कर रहा था, दिल बदला अल्लाह ने तो जिंदगी बदल गई, लोग वही हैं, इन सब के साथ मोहब्बत करें, इनको कुछ नहीं पता ये कर क्या रहे हैं, लेकिन कैसे हमें तो खुद नहीं पता, हम तो अपनी रस्मों में ये कुछ करने लग गए। याद रखिए वो लोग अपनी इबादत के नाम पे करते हैं ना, वो अपनी शादियों में रस्मों के नाम पे करने लग गए। तो बहरहाल इकरमा की किस्मत जाग उठी, अल्लाह के नबी उनको देखकर खुश हुए, लपके, फिर जब आप बैठ गए तो जनाबे इकरमा आपके सामने बादब खड़े रहे, अर्ज किया अल्लाह के रसूल उम्मे हकीम ने मुझे बताया कि आपने मुझे पनाह दे दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सच कहती है तुझे पनाह हासिल है। जनाब इकरमा ने दरियाफ्त किया अल्लाह के रसूल आप किस बात की दावत देते हैं, देखिए ये है सच, आज भी किसी दूर से दूर शख्स को भी आप इस्लाम का पैगाम दे दें उठ के चला जाएगा, ओके खुदा हाफिज गुड बाय, अंदर उसके एक हलचल शुरू हो जाएगी, वो रात को सोचेगा कि ये हुआ क्या, पैगाम दें, मस्त मलंग ना बने, आराम से ना बैठे, क्या पता आज का बीज जो बर्फ के अंदर दब गया है अगले साल फूट जाए, लेकिन आप अपना काम करते रहिए क्योंकि अल्लाह ने आपसे मुझसे इसका सवाल करना है। अब इकरमा के ये पूछने की देर थी, जरा अल्लाह के नबी देखिए क्या कह रहे हैं आगे से, आपने इरशाद फरमाया मैं तुम्हें इस बात की तरफ दावत देता हूँ कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, और मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, यहाँ तक कि आपने इस्लाम के तमाम अरकान शुमार कर दिए। जनाब इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा यकीनन आपने हक बात की तरफ दावत दी है और खैर और भलाई का हुक्म दिया है, फिर इसके बाद ये कहने लगे अल्लाह की कसम आप ये दावत पेश करने से पहले भी हम में सबसे ज़्यादा सच्चे और सालेह इंसान थे। ये कब की बात की, वही से पहले, आपको क्या लकब मिला था मक्का में, सादिक और अमीन, उम्मत को भी आज सादिक और अमीन बनना पड़ेगा, फिर लोग उनके मुंह से वही की बात सुनेंगे। इसे पता चला कि वो मुसलमान हुए नहीं थे उस वक़्त भी, और ये तो बेबी थे, लेकिन बाप दादा से बातें सुनी होंगी ना, लेकिन उनको ये पता था कि अल्लाह के नबी झूठे नहीं है और सच्चे बंदे को, नेक बंदे को कोई गलत कहता भी नहीं है, ये अलग बात है वैसा नेक ना बन सके। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा मैं इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और आप बिलाशुबा इसके सच्चे रसूल हैं। फिर अर्ज की है अल्लाह के रसूल मुझे चंद कलिमात सिखला दीजिए जो मैं पढ़ता रहूँ। आपने फरमाया तुम ये कलिमात पढ़ा करो अशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। जनाब इकरमा रदी अल्लाह उन्होंने दरियाफ्त किया कि इसके बाद क्या कहूँ, आप ने इरशाद फरमाया, तुम ये कहो कि मैं अल्लाह ताला और हाजरी ने मजलिस को गवाह बनाकर इकरार करता हूँ कि मैं मुसलमान, मुजाहिद और मुहाजिर हूँ। हज़रत इकरमा ने दिल की सच्चाई से यानी बिसमीम कल्ब इकरार किया। इस मौके पर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर आज तुम मुझसे कोई ऐसी चीज़ मांगोगे जो मैंने किसी को दी हो तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। कितना अल्लाह के नबी का दिल खुश होगा उस वक्त। ये तो वही महसूस करे जिसने लोगों को हिदायत की तरफ बुलाया और लोग भाग भाग के थक हार के बिलाखिर आके खड़े हो गए कि हमें बचा लें इस दुनिया से। अब सोचिए इकरमा ने क्या मांगा होगा। इकरमा ने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे हर वो अदावत माफ़ कर दे जो मैंने आपसे की, और इस मुकाबले की माफ़ी दे जो ज़माने जाहिलियत में आपसे किया, और हर वो बात माफ़ कर दें जो आपके सामने या गैर हाजिरी में आपके खिलाफ की। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, इलाही इसे हर वो अदावत माफ़ कर दे जो इसने मुझसे की, और इस रास्ते की हर लग्जिश को माफ़ कर दे जिसमें ये तेरे इस्लाम के नूर को बुझाने के लिए चला। इलाही मेरे सामने या मेरी गैर हाजिरी में जो ये मेरी इज्जत के दर पे हुआ इसकी ये लग्जिश भी माफ़ कर दे। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा खुशी से तमतमा उठा और ये कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, अल्लाह की राह से रोकने के लिए जो कुछ मैं खर्च किया करता था इससे दो गुना ज़्यादा अब राह खुदा में खर्च किया करूँगा, और जो मैंने अल्लाह की राह से लोगों को रोकने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी अब मैं अल्लाह की राह में दो गुना ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ूंगा। ये चेंज आता है फिर इस्लाम से। जिन्होंने कुछ हिस्सा जहालत में गुजारा हो ना, वो बहुत बेहतरीन मुसलमान बनते हैं। अब ये नहीं कि पहले जान के जाहिल हो, ये सीखिए कि जिसको पता है कि बुराई क्या होती है उसको लग पता जाता है, तो कोई बुरा तजुर्बा हो जाए ना तो फिर अपने लोगों की भी कदर आई जाती है कि नहीं ये अच्छे ही हैं। इस दिन से मैदान जंग का ये बहादुर शख्सवार, बहुत बड़ा इबादत गुजार, शब जिंदादार यानी जिसकी रातें जिंदा थी, और मसाजिद में कसरत से अल्लाह ताला की किताब को तिलावत करने वाला बन गया, इनकी हालत ये थी कि कुरान मजीद अपने चेहरे पर रखते और कहते, ज़रा सुनिएगा मोहब्बत भरे जुमले, मेरे रब की किताब, मेरे रब की किताब, मेरे रब का कलाम, और फिर खशियत इलाही से रोना शुरू कर देते। हमने भी कभी इस किताब से इतनी मोहब्बत की? ये दिल की बातें होती हैं, याद रखिए, ये आर्टिफिशियली नहीं हो सकती, ये तो सच्चे जज्बे होते हैं। कुरान पढ़ना शुरू करें और रोना शुरू कर दें। हज़रत इकरमा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया वादा पूरा कर दिखाया। इस तरह के जिस मार्के में भी मुसलमान दाखिल हुए, इकरमा भी इस्लाम लाने के बाद इसमें शरीक हुए, जिस महाज के लिए भी निकले आप इसमें सरे फहरिस्त रहे। गज़वा यरमूक में तो इकरमा लड़ाई की तरफ इस तरह मुतवज्जे हुए जिस तरह कोई प्यासा गर्म तरीन दिन में ठंडे पानी की तरफ लपकता है। इसको नोट करें। जब इस मार्के में मुसलमानों पर दुश्मन की तरफ से शदीद दबाव पड़ा तो इकरमा अपने घोड़े से नीचे उतर आए और अपनी तलवार की नियाम तोड़ दी और रूमियों की सफ़ों में घुस कर बेजिगरी से लड़ना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जल्दी से आगे बढ़े और फरमाए, इकरमा इस तरह ना करो, तुम्हारा यहाँ कत्ल हो जाना मुसलमानों को बहुत गिरा गुजरेगा। तो उन्होंने फरमाया, सुनिएगा ये जुमले, ये हैं एक शर्मिंदा दिल से निकले हुए जुमले, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु आप पीछे हट जाएं, आपने तो पहले ईमान लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत हासिल कर ली, मैं और मेरा बाप तमाम लोगों से बढ़कर रसूलुल्लाह के मुखालिफ रहे, मुझे छोड़ दीजिए ताकि मैं आज अपने गुनाहों का कफारा दे लूँ। फिर कहा, भला ये कैसे हो सकता है कि बहुत से मुकामात पर मैंने रसूलुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो और आज रूमियों से पीठ फेर कर भाग जाऊं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, ये दिल से निकले हुए लफ्ज़ हैं। फिर मुसलमानों में ये ऐलान किया, आज मौत पर कौन बैत करेगा, यानी कौन है कि आ जाएगा और उसको पता है कि अब मैंने मरना ही मरना है। तो आपके चचा हारिस बिन हिशाम और दरार बिन अजर के अलावा 400 मुसलमानों ने आपके हाथ पर बैत की। उनको जरासीमों से डर नहीं लगता था? आज सुबह से मेरे दिल में ये बात चल रही है, सहाबा तो मैदान जंग में जाते थे जहाँ मौत यकीनी लगती है, तलवार तीर तो यहाँ तो जरासीमों से ही डर गए हम, जो नजर भी नहीं आते बेचारे। सोचिए आज के मुसलमान का सबसे बड़ा फितना मौत का डर, मौत से डरते हैं हम। साहबा मौत से प्यार करते थे, वो मौत के बाद के लिए तैयारी करते थे, हम मौत से पहले की तैयारियों में खो गए। 400 लोग उस वक्त भी ऐसे थे जिनको पता था अब गए तो गए बस। आज 400 भी नहीं, कि एक मुल्क के चार बंदे मर जाए तो सारी दुनिया को अजीबोगरीब कशमकश में डाल देते हैं लोग। हजरत खालिद बिन वलीद के खेमे की आड़ में जोरदार लड़ाई लड़ी और आपकी जानिब से बेहतरीन दिफा किया। जब मार्का यरमूक में मुसलमानों को अजीम फतह हासिल हो चुकी, ये कितनी हैरतनाक बात थी, फिर भी मुसलमान ही जीतते थे, हालांकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता था। तो मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो सरजमीन यरमूक में 3 मुजाहिद लेटे हुए थे जिन्हें जख्मों ने निढाल कर दिया था। ये हारिस बिन हिशाम, अय्याश बिन अबी रबिया और इकरमा बिन अबी जहल थे। हारिस ने पीने के लिए पानी मांगा। जब इनकी खिदमत में पानी पेश किया गया तो हजरत इकरमा रजी अल्लाह अन्हु ने पानी की तरफ देखा तो हजरत हारिस ने कहा कि पहले इनको पिला दो। जब पानी इनके करीब लाया गया तो अय्याश ने इनकी तरफ देखा तो इकरमा ने कहा पहले इनको पिला दो। जब पानी अय्याश के पास लाया गया तो इनकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर चुकी थी, यानी जिस्म के इस बर्तन से निकल चुकी थी। जब पानी पहले दोनों साथियों के पास लाया गया तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। अल्लाह इन सब पर राजी हो गया और इन्हें हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा जिसके पीने से इन्हें कभी प्यास न लगेगी और इन्हें जन्नतुल फिरदौस के सब्जा जार में जगह अता फरमाए जिसमें वो हमेशा खुशहाल रहे। तो ये थे इकरमा बिन अबी जहल। कितने अप्स एंड डाउन हैं इनकी ज़िंदगी में, कितने अरूज और जवाल हैं। पता नहीं हमारे ईमान में भी कुछ तलछट हुई कि नहीं, कुछ उछला कूदी हुई नहीं। तो सोए हुए ईमान को बेदार करने के लिए यह वेकअप कॉल अच्छी होती है। ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़नी चाहिए कि जिनके बारे में अलामा इकबाल ने कहा कि ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तू ने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी खैबत से राई। ये बड़ी अच्छी बात है इनकी। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि अल्लाह के नबी ने अबू जहल के इस्लाम की दुआ की थी, वो इकरमा बिन अबू जहल को मिल गई, बाप का माल बेटे को मिल गया।
जजाक अल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।